लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं के संबंध में धर्माधीक्षकों की धर्माध्यक्षीय धर्म सभा 2018 युवा विश्वास और बुलाहटी मंथन पर एक चर्चा सुन रहे हैं। युवाओं की धर्म सभा के तीसरे भाग वे शीघ्रता से चल पड़े में हम युवा और कलिसिया में युवाओं का जिक्र कर रहे हैं। श्रोताओ, समुदाय की प्रभाविकता जहां हम विभिन्न चेहरों को देखते हैं स्थानीय समुदाय को प्रभावित करती है, जहां हम अपने सामाजिक दायरे में लोगों और नागर अधिकारियों को प्रभावित करते हैं। समुदाय अपने में जब विभिन्नताओं के बावजूद एकता में बना रहता तो वह अपने को खुले रूप में समाज की चुनौतियों के सामने सुसमाचार की ज्योति को प्रकाशित करने के योग्य बनता है। पर्यावरण की समस्या, रोजगार, परिवार में सहयोग, प्रवासन, राजनीति में नवीनीकरण, संस्कृति और धार्मिक विभिन्नताएं, न्याय और शांति की खोज तथा डिजिटल वातावरण, ये सारी चीजें कलिसिया के संघों और आंदोलनों में हो रही हैं। युवा हमसे इस बात की मांग करते हैं कि हम इन सारी समस्याओं का समाधान केवल ना करें, वरन हम उनसे वार्ता करें, जिससे वे जन सामान्य की भलाई हेतु अपना सहयोग दे सकें। श्रोताओ, सुसमाचार की घोषणा जहां हम यीशु ख्रीस्त को पिता के द्वारा दुनिया में भेजे गए पुत्र जो मानव मुक्ति हेतु मरकर मृतकों में से जी उठे घोषित करते, हमारे ख्रिस्तीय सामुदायिक बुलाहट की आधारशिला है। इस घोषणा का मुख्य भाग यह है कि हम युवाओं को अपने में ईश्वर के प्रेम के निशाने को देखने और पहचानने हेतु निमंत्रण दे, जहां वे समुदाय को यीशु ख्रिस्त से मिलन हेतु एक महत्वपूर्ण स्थल स्वरूप पाते हैं। यीशु ख्रिस्त के बारे में यह घोषणा हमारी धर्म शिक्षा का सार है, जिसे हम युवाओं के मध्य सुसमाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमें यीशु ख्रिस्त के प्रति अपने समर्पण को लेकर निष्ठावान बने रहने की जरूरत है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में सुसमाचार के अनुरूप यीशु ख्रिस्त के ज्ञान में बढ़ते और व्यक्तिगत अनुभवों की गहराई में उतरते और इतिहास की घटनाओं को विश्वास की निगाहों से देखने के योग्य बनते हैं। हम अपने जीवन को प्रार्थना और यूखारिस्तीय बलिदान से पोषित करते और धर्म ग्रंथ के पठन द्वारा करुणा में न्याय के कार्यों को करने हेतु सबल बनते हैं। ऐसा करने के द्वारा हम युवाओं के लिए एक सच्ची आध्यात्मिकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्रोताओ, धर्म शिक्षा का आयोजन हमसे इस बात की मांग करती है कि हम उन्हें विश्वास के संदर्भ से संयुक्त करते हुए अपने प्रतिदिन के जीवन के ठोस अनुभवों, दुनिया की भावनाओं और उसकी आसक्तियों में प्रकट करें, जिसके अनुरूप हम अपने जीवन में खुशी और निराशा का अनुभव करते हैं। धर्म शिक्षा में कलिसियाई सामाजिक शिक्षा को संयुक्त किया जाए। यह भाषाओं की सुंदरता, संगीत और विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों को अपने में सम्माहित करे तथा डिजिटल संचार माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसमें शारीरिक आयामों, इसकी प्रभावकारिता और लैंगिकता का विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि विश्वास और प्रेम की शिक्षा में हम गहन संबंध को देखते हैं। विश्वास को हमें इस रूप में देखने और समझने की जरूरत है जो हमें दुनिया में जीवन यापन करने हेतु एक मार्ग प्रशस्त करता है। श्रोताओं, युवाओं के लिए धर्म शिक्षा हमारा ध्यान इस ओर कराती है कि हम मुख्य बातों की प्रस्तुति से दिशा विहीन हुए बिना उनके संदर्भ में उचित भाषा और तरीकों का उपयोग करें, विशेष करके यीशु से मिलन के संबंध में जो धर्म शिक्षा का केंद्र बिंदु है। यू कैट और डू कैट जो युवाओं के लिए और सारी कलिसिया के विश्वासियों के लिए कलिसिया की धर्म शिक्षा और सामाजिक शिक्षा को एक विशेष रूप में प्रस्तुत करती अपने में खास है, जिसे हम विभिन्न धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों की धर्म शिक्षा कहते हुए तटस्थ नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमारे लिए उन लोगों को भी अपने को नवीनीकरण करने की बात आती है जो युवाओं की धर्म शिक्षा और उनसे संबंधित अन्य कार्यों में संलग्न हैं। यह कलिसिया के लिए एक महत्वपूर्ण विचार की विषय वस्तु है कि हम युवाओं के प्रशिक्षण प्रेरित कार्य में संलग्न लोगों का प्रशिक्षण किस रूप में करते और उनके कार्यों को अपने समुदाय में कितना महत्व देते हैं। श्रोताओ, यूखारिस्तीय बलिदान हमारे लिए एक सामुदायिक जीवन और कलीसियाई सिनोडालिटी की शुरुआत करती है। यह हमारे लिए वह स्थल बनता है जहां हम विश्वास और प्रेरिताई की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हमारे लिए इस बात को सत्यापित करता है कि कलीसिया कृपाओं के कारण जीवित रहती है, न कि मानव के हाथों द्वारा किए गए कार्यों के कारण। पूर्वी रीति की परंपराओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म विधि में हमारा मिलन दिव्य सेवक से होता है जो हमारे घावों की चंगाई करते और हमें अपने भोज में शामिल करने हेतु तैयार करते हैं। वे हमें अपने भाइयों और बहनों के बीच स्वयं अपने इस कार्य को पूरा करने हेतु भेजते हैं। अतः हमें अपने में इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है कि प्रतिबद्धता में एक सादगी के साथ कलीसिया के कार्यों में संलग्न लोक धर्मियों संग इस समारोह को मनाना हमारे लिए प्रेरितिक परिवर्तन का एक अनिवार्य तत्व बनता है। युवाओं ने मिसब बलिदान में अपनी सहभागिता के माध्यम अपनी गहरी रुचि को व्यक्त किया है, जो प्रभु वचन के उद्घोषणा में तैयारी और समुदाय की सहभागिता स्वरूप हमारे बीच ईश्वरीय उपस्थिति की सुंदर निशानी को व्यक्त करती है। अतः हमें चाहिए कि हम मिसब बलिदान में युवाओं की सक्रिय सहभागिता पर बल दें। साथ ही साथ हम इस बात का भी ख्याल करें कि वे धर्म विधि को सिर्फ अपने संगीत और व्यक्तिगत कलात्मक संवेदनशील अभिव्यक्ति तक ही सीमित न रखें, वरन वे इसे कलीसिया और ईश्वर के कार्य स्वरूप भी समझने हेतु अपने को खुला रखें। हमारे लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम युवाओं को यूखारिस्तीय आराधना के महत्व को जानने में मदद करें, जो धर्म विधि का एक विस्तृत स्वरूप है, जहां हम अपने को शांतिमय प्रार्थना द्वारा ईश्वरीय उपस्थिति में प्रस्तुत रखते हैं। श्रोताओ, मेल मिलाप संस्कार का हमारे विश्वास के जीवन में एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। युवा अपने जीवन में प्रेम पाने की चाह रखते हैं, वे क्षमा किए जाने और मेल मिलाप की आशा करते हैं। वे दयालु पिता के आलिंगन हेतु अपने में आतुर रहते हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरोहितों को चाहिए कि वे इस संस्कार के निष्पादन हेतु अपने को उदारता में तैयार रखें। सामुदायिक पश्चाताप की धर्म विधि युवाओं को व्यक्तिगत रूप से इस संस्कार में सहभागी होने हेतु मदद करता है, जहां वे अपने में कलीसियाई आयाम को व्यक्त करते और इसके अंग बनते हैं। हम सब है क्रिस्ती शरीर, कलीसिया।
सब है क्रिस्त के शरीर, कलीसिया के वो है शीश,
पति स्वामी एक जीवन, जीना हमें है प्रभु का जीवन, प्रेम भरोसा विश्वास का जीवन, कलीसिया से प्रेम करो, पवित्र आत्मा का वो वरदान, कलीसिया से प्रेम करो, पवित्र आत्मा का वो वरदान, वो हमारी माता है, क्रिस्त का है वो शरीर, कलीसिया से प्रेम करो।
हम है प्रजा ईश्वर की है हम संतान,
कलीसिया की हम है प्रजा ईश्वर की है हम संतान,
हमारा दिल है प्रभु का मंदिर, पवित्र आत्मा जिसमें है बसता, उसके कार्यों का करे बखान, कलीसिया से
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस आज संध्या थाईलैंड और जापान की प्रेरित यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने प्रस्थान करने के पूर्व एक ट्वीट प्रसिद्ध कर वहां के लोगों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ट्वीट संदेश में लिखा, आज मैं अपनी 32वीं प्रेरित यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। थाईलैंड और जापान के प्रिय मित्रों, एक दूसरे से मुलाकात करने से पहले आइए हम एक साथ प्रार्थना करें ताकि ये दिन कृपा एवं आनंद से संपन्न हो। संत पापा फ्रांसिस ने अपनी आदत के अनुसार थाईलैंड और जापान की यात्रा शुरू करने के पूर्व आज रोम स्थित मरिया मेजर महागिरजा घर जाकर रोम के संरक्षिका माता मरियम का दर्शन किया। संत पापा फ्रांसिस आज 19 नवंबर को रोम समय अनुसार संध्या 7 बजे रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के लिए प्रस्थान करेंगे। थाईलैंड और जापान में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा के पूर्व वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेट्रो परोलिन ने कहा है कि संत पापा वहां मिशन, पर्यावरण की रक्षा एवं शांति जैसे विषयों पर जोर देंगे। संत पापा फ्रांसिस 19 से 23 नवंबर तक थाईलैंड एवं 23 से 26 नवंबर तक जापान की प्रेरित यात्रा करेंगे, जो उनकी 32वीं प्रेरित यात्रा होगी। कार्डिनल परोलिन ने वैटिकन न्यूज के पत्रकार मासिमिलियानो को दिए एक साक्षात्कार में सोमवार को संत पापा की यात्रा की उम्मीदों पर प्रकाश डाला। कार्डिनल परोलिन ने कहा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की थाईलैंड में सन 1984 में तथा जापान में 1981 में प्रेरित यात्रा के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। वैश्वीकरण ने इसका आकार छोटा बना दिया है और लोग शारीरिक रूप से दूर होते हुए भी आमने सामने बात कर सकते हैं, किंतु संत पापा उन स्थानों पर पहुंचना चाहते हैं ताकि लोगों के साथ साक्षात में मुलाकात कर सकें, क्योंकि मानव व्यक्ति कलीसिया के केंद्र में है। कलीसिया सुसमाचार का प्रचार हर एक व्यक्ति के लिए करना चाहती है ताकि उनके जीवन में कठिन सवालों का उत्तर दे सके और उन्हें जीवन का अर्थ खोजने में मदद मिल सके। थाईलैंड में संत पापा की प्रेरित यात्रा का कारण पूछे जाने पर कार्डिनल परोलिन ने कहा कि वे जेसुइट मिशनरियों के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्होंने 350 वर्षों पहले पहली बार सुसमाचार का प्रचार किया था। अतः संत पापा के संदेश का महत्वपूर्ण भाग होगा मिशनरी शिष्य होने के लिए क्रिस्तियों का बुलावा। संत पापा थाईलैंड में करीब 4 लाख कैथोलिकों को प्रोत्साहन देंगे कि वे पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को खोलें, जो मिशन के सच्चे नायक हैं। उन्होंने कहा,
मिशन तभी सार्थक होता है जब इसे आकर्षक और साक्ष्य रूप में बदल दिया जाता है। कार्डिनल परोले ने संत पापा की यात्रा के दूसरे भाग जापान पर प्रकाश डालते हुए कहा, जापान की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि संत पापा वहां परमाणु मुक्ति के प्रयास को प्रोत्साहन देंगे। कार्डिनल ने जापान को एक जटिल राष्ट्र कहा जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में दो परमाणु बम के कारण बहुत अधिक दुख झेला है, फिर भी अनोखे रूप से सुधार लाने में सफल रहा है। देश अपने को परंपरा एवं अनुसंधान के बीच पाता है जब वह वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि संत पापा जापान में हमारे आम घर की देखभाल, शांति की खोज एवं निरस्त्रीकरण शांति के लिए आवश्यक आदि विषयों पर प्रकाश डालेंगे। अंततः कार्डिनल ने कहा कि संत पापा एशिया की यात्रा कर रहे हैं ताकि अपने लोगों के करीब आ सकें, लोगों की खुशी आशाओं एवं आकांक्षाओं को बांट सकेंगे, साथ ही साथ उनके दुखों पीड़ाओं और पूर्वाभासों में शामिल हो सकेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को विश्व खाद्य कार्यक्रम को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि वे जीवन शैली में बदलाव लाकर खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के वैश्विक अभियान हेतु संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का समर्थन करें। संत पापा ने लिखा, यदि हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कोई पीछे न रहे, तब हमें एक ऐसे वर्तमान का निर्माण करना होगा जो भोजन के अपव्यय को दूर करेगा। समय नष्ट किए बिना विचारों एवं संसाधनों को एक साथ रखकर हम एक जीवन शैली का प्रस्ताव रखें जो खाद्य पदार्थों को उचित महत्व देगा। संत पापा फ्रांसिस ने यह संदेश विश्व खाद्य कार्यक्रम के दूसरे नियमित सत्र के उद्घाटन के अवसर पर दिया। सत्र में विश्व में भूख के खिलाफ लड़ाई को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से व्यवहारिक पहल करने की मांग की जा रही है। संत पापा ने कहा, आपकी कई योजनाएं जिसमें खाद्य पदार्थों को नष्ट करना जो हमारे अंतःकरण को भारी बनाते हैं उसके निराकरण के लिए निर्णायक उपाय अपनाना भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की रोम शाखा विश्व की सबसे बड़ी मानवीय संस्था है जो भूख का सामना करती तथा विश्व में भोजन सुरक्षा को बढ़ावा देती है। यह 83 देशों में करीब 86.7 मिलियन लोगों को हर साल सहायता प्रदान करती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार विश्व के अनेक स्त्री एवं पुरुष अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन खिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। विश्व जो सभी लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है। करीब 821 मिलियन लोग या हर 9 में से एक रात में खाली पेट सोने जाता है। उससे भी बदतर स्थिति यह है, हर 3 में से एक को कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। संत पापा ने गौर किया कि कई स्थानों में हमारे भाई बहनों को पर्याप्त एवं पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि दूसरी ओर खाद्य पदार्थों को फेंका और नष्ट किया जाता है। संत पापा ने कहा कि इस विरोधाभास में सत्ताहीपन, लापरवाही और स्वार्थ के तंत्र शामिल हैं, जो नष्ट करने की संस्कृति को दिखलाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक हम खाद्य पदार्थों को नष्ट करने पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता को सम्मान देना और संयुक्त राष्ट्र 2030 के सतत विकास लक्ष्य को साकार करना संभव नहीं है। यह उद्देश्य न केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सरकारों की जिम्मेदारी है बल्कि हर एक की जिम्मेदारी है। इस बीच संत पापा फ्रांसिस ने 18 नवंबर को पलियों में सुसमाचार प्रचार के छोटे समुदायों चेलुले के स्वयंसेवकों से वैटिकन में मुलाकात की तथा उन्हें अपना संदेश दिया। समुदाय की शुरुआत 30 वर्षों पहले फादर पियर जोजो पेरिनी ने की थी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।